बहुत पढ़े लिखे आदमी से अगर ये पूछा जाए कि आपकी बड़ी ज़रूरियात क्या हैं, तो बहुत सारे लोग उन बड़ी ज़रूरियात में ताल्लुक़ को अपनी ज़रूरत के तौर पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। बहुत से बच्चों को ये महसूस होता है कि मेरी अम्मा जान मेरी रिपोर्ट कार्ड से मोहब्बत करती हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत जो है वो देने का अमल है। यानी अगर आप किसी को इसलिए चाह रहे हैं कि वो भी आपको जवाब में चाहे, तो ये आप बिज़नेस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया वा अमलन मुतकब्बला वा कल्बन ख़ाशिया। रब करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है, और फिर इतना अच्छा इल्म और इतना अच्छा अमल कर लेने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें अपने से डरने वाला ही रखिए। आज जो हमारा मौजू है, चैलेंजेस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये मौजू ऐसा है जिस पे काफ़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं दो तीन बातें बस अर्ज़ करूँगा और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने सवालात कीजिए। देखिए, इस वक्त दुनिया में एक मसला ये पैदा हुआ है कि बहुत बड़ी आबादी इस अकीदे के साथ या इस बिलीफ के साथ ज़िंदगी गुजार रही है कि हर काम पैसे से होता है और पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसे से कोई भी काम हो सकता है और पैसा सब कुछ होता है। तो एक तबका तो दुनिया में वो है जो इस अकीदे के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, दूसरा तबका वो है जो शऊरी तौर पर इस पे बिलीफ नहीं करता, लेकिन इस नैरेटिव या इस कह लीजिए इस फ़िज़ा से एक्सपोज रहने के नतीजे में और इसके ज़ेरे असर है। यानी वो शऊरी तौर पर तो ऐसा नहीं कह रहा कि सब कुछ पैसे से होता है और पैसा ही सब कुछ है और असल ज़रूरत होती ही पैसा है, लेकिन वो इस नैरेटिव या इस कह लीजिए इस फ़िज़ा के से मुतासिर ज़रूर हुआ है। और कुछ दुनिया में एक माइनॉरिटी ऐसी भी अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्ट करती है जो इस बात को महसूस करती है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत का नाम पैसा नहीं है, बल्कि इंसान की असल ज़रूरियात कुछ और हैं। यूँ कहिए कि हमारा जो शऊरे ताल्लुक़ है, शऊरे ताल्लुक़ से मुराद ये है कि ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है, ताल्लुक़ किसे कहते हैं, ताल्लुक़ हमारी ज़रूरत है भी या नहीं है, ये इस पूरी फ़िज़ा में इसको बहुत नुकसान पहुँचा है। और ये समझ सकना कि हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत ताल्लुक़ है, ये एहसास बहुत से लोगों को नहीं है। तो ताल्लुक़ से मेरी क्या मुराद है, मैं एक दो जुमलों में इसको वाज़े कर देता हूँ। देखिए, जब आप दुनिया में आते हैं तो किसी ना किसी के बेटे या बेटी होते हैं आप, तो रिश्ते के एतबार से आप चूँकि बेटी हैं या बेटा हैं तो ठीक है, आपका रिश्ता मौजूद है उनके साथ। और लेकिन ताल्लुक़ से हमारी मुराद रिश्ते में आ जाना ही नहीं है, बल्कि ताल्लुक़ से हमारी मुराद ये है कि आप उनका एतमाद इन्जॉय करें, यानी उनका एतमाद हासिल हो आपको और आप उन पर एतमाद कर सकें, आप उनके साथ रहने में खुशी और सुकून महसूस कर सकें, आप अपनी कोई भी बात आसानी से उनसे कह सकें और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने मसाइल एक दूसरे को बता सकें, अपनी बात एक दूसरे को बता सकें, बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में एक दूसरे को बता सकें। और ताल्लुक़ जैसे जैसे गहरा होता है तो फिर क़ुर्ब की ख्वाहिश, यानी हम एक दूसरे के करीब रहें, एक दूसरे के साथ रहें, स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस जो है वो भी और परवान चढ़ती है, तो ये भी एक ख्वाहिश ताल्लुक़ का एक नतीजा हो जाती है। फिर ताल्लुक़ और गहरा होता है तो जिससे हमारा ताल्लुक़ गहरा होता है उसकी अनकही बातें हमें समझना आसान हो जाती हैं। यानी जो वो कह रहा है वो तो समझते ही हैं, लेकिन जो वो नहीं कह रहा वो भी समझ में आने लगता है। कह लीजिए उसको बहुत अच्छी तरह हम समझने लगते हैं, उसको जानने लगते हैं, और वो ऐसा क्यों है ये हमारे लिए तकलीफ़ दे बात नहीं होती। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी ही कोई रिफ्लेक्शन हो, वो एक मुख्तलिफ इंसान हो सकता है, लेकिन उसके साथ ये जो दो इंसान हैं इनके दरमियान इकट्ठी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश बढ़ने लगती है, और दूसरे की एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए अहम हो जाती हैं। यानी वो क्या चाहता है या क्या चाहता होगा, उसने बोला तो नहीं है कि वो क्या चाहता है या क्या चाहता होगा, लेकिन मेरे लिए वो ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश या उसकी तवक्कुआत मेरे लिए अहम हो गई। फिर किसी ताल्लुक़ के अंदर मोहब्बत बड़ी अहम चीज़ होती है, तो मोहब्बत कैसे डिफ़ाइन हो सकती है कि मेरी ज़रूरत और किसी और की ज़रूरत, इसमें मेरे लिए दूसरे की ज़रूरत अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अहम हो जाए, तो ये एक स्टेट है कि आप मोहब्बत के अंदर आप जा रहे हैं। आपको दूसरे की ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अहम लगने लगे, ये भी एक स्टेट है, आप इस तरफ जा रहे हैं। मसला ये हुआ है कि इस वक्त दुनिया में बहुत पढ़े लिखे आदमी से अगर ये पूछा जाए कि आपकी बड़ी ज़रूरियात क्या हैं, तो बहुत सारे लोग उन बड़ी ज़रूरियात में ताल्लुक़ को अपनी ज़रूरत के तौर पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ताल्लुक़ जो है वो, बल्कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो पैसा इतनी बड़ी ज़रूरत है, मतलब पैसे पैसे को वो ज़रूरी समझेंगे लेकिन ताल्लुक़ को ज़रूरी नहीं समझेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इंसान को नहीं चाहिए होता, लेकिन ताल्लुक़ की जो अहमियत और ज़रूरत है वो उनको उस तरह वाज़े नहीं हो सकी है। और जो शऊर ताल्लुक़ है, जिसके अंदर मैं ये वाली बातें कह रहा हूँ कि ताल्लुक़ कहते किसे हैं, ताल्लुक़ बनता कैसे है, ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है, इस बात को अच्छी तरह समझे नहीं हैं। और जब ताल्लुक़ जैसे जैसे बुलंद होता है, तो फिर हमें दूसरे की तवक्कुआत समझ में आने लगती हैं, हमें दूसरे की खुशी का ख्याल रखना हमारे लिए अपनी खुशी का सामान पैदा करता है, दूसरे को राहत देना हमारे लिए अपनी खुशी का सामान पैदा करता है, दूसरे की नीड्स अपनी नीड्स पे प्रेफर करने लगते हैं, दूसरे की वांट्स अपनी वांट्स पे प्रेफर करने लगते हैं, हत्ता कि एक वो पॉइंट आता है जिसमें दूसरे की वांट्स अपनी नीड्स पर प्रेफर करने लगते हैं। ये एक बहुत ही आगे की बात है, लेकिन ये कि अब अगर इंसान के पास इल्म मौजूद होता है, तो फिर वो उस ताल्लुक़ के अंदर एक नया रंग पैदा होता है, और उस ताल्लुक़ के अंदर तज़किए और तरबिया के सामान पैदा हो जाते हैं। इस मोहब्बत के अंदर अगर मुझसे किसी बहुत समझदार इंसान को मोहब्बत हो जाएगी, या आपसे किसी बहुत काबिल इंसान और बहुत इल्म वाले इंसान और बहुत बाकिरदार इंसान को मोहब्बत हो जाती है, तो फिर वो मोहब्बत हमारे साथ दो काम करती है। एक तो ये कि हमारी जो ताल्लुक़ की नेचुरल नीड है वो भी एड्रेस होती है, और दूसरी हमारी तज़किए की भी नीड एड्रेस होती है, क्योंकि वो एक बहुत समझदार बहुत काबिल इंसान है, वो मेरी ख्वाहिशात को अहमियत देता है, लेकिन मेरी ख्वाहिशात को ठीक करने की भी कह लीजिए वजह बन जाता है, तो वो ब्लाइंडली मेरी विशेस को फॉलो नहीं करता। तो अभी इस वक्त मसला ये हुआ है कि हमारे बच्चों की या हमारे माशरे की जो बहुत बड़ी ज़रूरत थी ताल्लुक़, वो एड्रेस नहीं हो सकी है, और हमारी सोसाइटी में बल्कि पूरी दुनिया में इंडिविजुअलिज्म जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी हर इंसान अपने एक आइलैंड में रहना चाहता है, अपने आइलैंड से बाहर नहीं निकलना चाहता, उसकी जद्दोजहद का मकसद ये होता है कि वो अपने आइलैंड को कम्फर्टेबल कर ले, अपने आइलैंड को इक्विप कर ले, अपने आइलैंड को बहुत रिसोर्सफुल कर ले, और अपने आइलैंड को ऐसा बना ले कि किसी और से उसको कुछ भी कभी भी कोई काम ही ना पड़े, कुछ जाना ही ना हो, कुछ चाहिए ही ना हो, और वो अपने आइलैंड में अपने आप को मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट लाइफ के तौर पर वो अपने आप को ज़िंदगी गुजारे। ये एक इल्यूजन है, इसके नतीजे में ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़देह होती है। तो इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है ताल्लुक़। एक चीज़ और हमें समझनी चाहिए कि ताल्लुक़ जो है वो दीनदारी की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन का नाम है। यानी आप दीनदारी के तकाजे प्रैक्टिकली इस दुनिया में, इस रूए अर्ज़ पर चलते फिरते कैसे पूरे कर सकते हैं, वो हुस्न ताल्लुक़ की वजह से पूरे कर सकते हैं। यानी अपने रिलेशनशिप्स को खूबसूरत बनाकर आप वो बंदगी के तकाजे पूरे कर सकते हैं। तो तीन बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ताल्लुक़ जो है वो हमारी ज़रूरत है। पहली ये है कि ताल्लुक़ हमारी नफ्सियाती ज़रूरत है, हमारी अपनी नफ्सियाती ज़रूरत है। ताल्लुक़ जब हम ताल्लुक़ में नहीं होते तो ये हमारे अपने लिए बड़ी बेचैनी और बहरान वाली कैफियत होती है। मतलब दुनिया में ऑयल के क्राइसिस से ज़्यादा बड़ा क्राइसिस है रिलेशनशिप का क्राइसिस। جس میں انسان جو ہے وہ واقف کاروں کے ہجوم میں تنہا زندگی گزار رہا ہے. اس کے پاس اس کے فون بک کے اندر سینکڑوں کانٹیکٹس اسٹورڈ ہیں, اس کی سوشل میڈیا میں سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کے, انسانوں کے, یعنی واقف کاروں کے ویب میں تو ہے لیکن تعلق کی ویب اس کو نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑی اور تکلیف دہ صورتحال ہے. تو تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی نفسیاتی ضرورت ہے. یہ کیسے ہے میں اس کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں. اگر آپ پانی, کوئی ایسا پانی آپ کو دیکھنا نصیب ہو جس کے اندر گیلاہٹ نہ ہو, یعنی پانی تو ہے لیکن وہ گیلا نہیں کرتا, یا کوئی شہد تو آپ نے دیکھا ہو لیکن وہ شہد میں مٹھاس نہ ہو, تو گیلا کرنا جو ہے وہ پانی کی سب سے بنیادی فطری جوہر ہے پانی کا, کہ پانی گیلا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کا جو فطری جوہر ہے, انسان کا جو سب سے بنیادی جوہر ہے, وہ اس کا جوہر تعلق ہے. اور جب انسان اپنے جوہر تعلق, یعنی انسان کی سب سے بڑی کیپیسٹی, بلکہ میں تو انسان کی کریٹیویٹی کے تین بڑے مصارف ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کو خوبصورت بنانے میں یوٹیلائز ہو. میری کریٹیویٹی میرے ریلیشن شپس کو خوبصورت بنانے, میرے ریلیشن شپس کو ٹوٹنے سے بچانے, میرے ریلیشن شپس کو امپروو کرنے, میرے ریلیشن شپس کو پروٹیکٹ کرنے میں میری کریٹیویٹی یوٹیلائز ہو, یہ بہت بڑا مصرف ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ تعلق جو ہے وہ اس وقت ہمارے یہاں اس طرح ہم نے محسوس نہیں کیا. اور جو وہ تین وجوہات میں بات کروں کہ ہماری اپنی نفسیاتی ضرورت ہے, یعنی تعلق نہ ہونے کے نتیجے میں ہم نفسیاتی صحت یا نفسیاتی کہہ لیجئے اعلیٰ ترین نفسیاتی صحت کا تجربہ نہیں کر سکتے گہرے تعلق کے بغیر. دوسری جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بندگی کے تقاضے نہیں نبھائے جا سکتے تعلق میں, انسانوں سے تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر بندگی کے تقاضے نہیں نبھائے جا سکتے. اور تعلق کیوں ضروری ہے, اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی تربیت کے لیے تعلق ایک نان نیگوشیبل پری ریکوزٹ ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, آپ تربیت کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے بچوں سے گہرا تعلق نہ بنا پائیں. تو بچوں سے گہرا تعلق بننے کا بھی مطلب وہی ہے جو میں نے تعلق کے بارے میں بتایا ہے, کہ وہ آپ سے سہولت سے اپنی بات کہہ سکیں, وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں, وہ آپ کی پریزنس کو انجوائے کرنا چاہیں, آپ کی پریزنس کے اندر وہ بہت ریسپیکٹ فل محسوس کرتے ہوں, اپنی ہر بات آپ سے مشورہ لینا چاہیں, آپ پر اعتماد کر سکیں, آپ کا اعتماد حاصل کر سکیں, آپ کی توقعات ان کے لیے, یعنی تعلق جب بہت ایک اونچے لیول پہ آ جاتا ہے تو پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس میں ایک دوسرے کی توقعات ایک دوسرے کے لیے اہم ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز یا ایک دوسرے کی خوشی جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت ہوا یہ ہے کہ ہم اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہیں, یا زندگی کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ تعلق بہت نظر انداز ہوا ہے اور اس سے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. میں ایک سچویشن ابھی اگر آپ سے کہوں کہ 8 سے 100 سال پہلے کسی آدمی کو یہ کہا جاتا کہ تم اپنی محبوبہ کو اپنا ایک پھول جو ہے وہ پیش اگر تمہیں کرنا ہے تو تم اس کے لیے ایک سروس کا انتخاب کرو گے جو سینٹیمنٹس کے نام سے ایگزسٹ کرتی ہے, اور تم اسے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرو گے اور اس میں فلاور چوز کرو گے اور پھر اس کو بتاؤ گے کہ میری محبوبہ کو آپ جو ہیں وہ گلاب کا پھول جا کے دے دیجئے گا اور اس میں غالب کا یہ شعر بھی ڈال دیجئے گا, تو اس سے تمہیں کتنی تسلی اور کتنی خوشی حاصل ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ 100 سال پہلے اگر آپ کسی آدمی سے یہ کہتے تو وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے. وہ کہتا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ میری محبوبہ کو میں اپنے ہاتھ سے جا کے گلاب کا پھول دوں گا اور یہ میرا اور اس کا تعلق ہے, میرے اور اس کے معاملے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں اور یہ درمیان میں سروس کون سی آ گئی جس میں کوئی. تو آپ کہیں گے نہیں, ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ گے اور تمہارا ہر ٹائم جو ہے نا اس کی ایک پرائس ہوگی. اور پیچھے چلے جائیں تھوڑا, 300-400 سال پیچھے چلے جائیں, تو اگر آپ کسی انسان سے یہ کہتے ہیں نا کہ گلاب کے پھول جو تمہیں اپنی محبوبہ کو دینے ہیں وہ کسی بندے نے خود ہی باغ سے توڑ لیے تھے اور وہ ٹیبل پہ سجائے بیٹھا ہے اور تمہاری جیب میں پیسے ہونے چاہئیں اس پھول کو خریدنے کے, تو اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم وہ پھول خرید سکتے ہو اور تم جا کے اس کو دے دینا. تو और पीछे चले जाएं तो इस बात पर भी हंगामा हो जाता। वो बड़ा इस बात को माइंड करता, वो कहता आप कैसे आदमी हैं, मतलब मैं अपनी महबूबा को अगर फूल दूंगा तो वो फूल मैं खुद बाग से जाके तोड़ूंगा, मैं उसे अपने शौक से अपने जज्बे से पसंद करूंगा, उसको मैं पिक करूंगा और फिर अपने हाथ से ले जाके उसको जाके दूंगा, ये मेरा मामला है। और इसके अंदर उसके सेंटिमेंट्स, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, ये सब शामिल होती। लेकिन अब हम और फास्ट फॉरवर्ड ज़रा मॉडर्न लाइफ में आ जाते हैं, तो एक टाइम वो था जब फूल मिल जाते थे, ख़रीदते थे हम, फिर और आगे बढ़े, फिर वो फूल देने वाला भी एक सर्विस आ गई, उसने कहा कि सेंटिमेंट्स की सर्विस है, आप ऑफिस में बैठे रहें, बीवी को घर पे फूल भिजवा दीजिएगा। फिर और आगे चलते हैं, ज़्यादा मॉडर्न हो गया, फिर उन्होंने कहा कि भाई इसकी भी क्या ज़रूरत है, वो इतने अच्छे अच्छे इमोजीज मौजूद हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें मौजूद हैं, ये आप ऐसी सर्विस ही डाउनलोड कर लें और आप अपने मोबाइल से उनको बस मतलब दे दें। मतलब मैं हैरान होता हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं अपने मामलात डिस्कस करने के लिए। मैंने किसी से पूछा कि आपको आपकी बीवी ने कभी कोई तोहफ़ा दिया या आपको ये मैं उस कपल की बात कर रहा हूँ जो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए मुझसे आया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमने इनको एक तोहफ़ा दिया था, मैंने इनको तोहफे में एक चीज़ भेजी थी। मैंने कहा भेजी थी तो ये क्या आपके साथ नहीं रहती हैं? उन्होंने कहा हाँ साथ तो रहती हैं लेकिन मैं देर से आता हूँ, ये सो चुकी होती हैं, तो मैंने एक सर्विस एक चूज़ की और उसको मैंने ऑर्डर दिया और उसने घर जाके किसी ने उनको केक डिलीवर कर दिया, उनको घर जाके किसी ने परफ्यूम डिलीवर कर दिया, उनको घर जाके किसी ने कोई और चीज़ डिलीवर कर दी। तो हम इस जगह पर खड़े हैं इसलिए कि इजहार मोहब्बत भी अब पैसों से मुमकिन हो रहा है, मतलब ये वाली जगह पर हम चले गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो अहम हो गई हैं, काम अहम हो गए हैं और इंसान गैर अहम हो गए हैं। मतलब काम और चीज़ें इंसान से ज़्यादा अहम हो गई हैं, यानी बस चीज़ें बहुत बार बार चीज़ों का ख्याल आता है, बार बार चीज़ों को बेहतर करते हैं, बार बार अपने कामों की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। तो हमें इससे निकलना होगा और हमें यह सोचना होगा कि जब हमारी लाइफ में कंफर्ट ऐड होती है तो क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है, तो इसको सोचना होगा। और अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ वक्त निकालना पड़ेगा, अपने साथ वक्त लगाना पड़ेगा। और एक मसला ये भी हुआ है जो अपने आप को ना समझ सकने का एक नतीजा ये निकला है कि इंसान के अंदर तारीफ सुनने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो गई है, बहुत ज़्यादा अर्ज है इस वक्त आज के जदीद आदमी में अपनी तारीफ सुनने की, बल्कि वो तारीफ सुनने को अपना हक़ समझता है, बल्कि नाराज़ हो जाता है कि आपने मेरी तारीफ़ नहीं की। तो अगर मैं ये कहूँ कि तारीफ़ किए बग़ैर और पैसा ख़र्च किए बग़ैर आप अपने बिलव्ड को कैसे खुश रख सकते हैं, अगर मैं ये सवाल करूं तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम कैसे खुश रखें। मतलब अगर ये शर्त लगा दी जाए, अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं कि आपने एक रुपया भी खर्च नहीं करना, एक पैनी भी खर्च नहीं करनी और आपने तारीफ़ भी नहीं करनी और आपने बीवी का दिल जीतना है या आपने अपने शौहर का दिल जीतना है या आपने अपने बच्चों का दिल जीतना है या आपने अपने पेरेंट्स का दिल जीतना है, तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम वो सारे आदाब भूल चुके हैं जो यानी इंसान ने जो तहज़ीब होती है ना, वो आदाब मोहब्बत को और अख़लाक को बुलंद रखती है। यानी जो बड़ी तहज़ीब होती है वो आदाब यानी मोहब्बत के इजहार, मोहब्बत के आदाब ये सिखाती है और उसके अंदर जो इखलास होता है वो बहुत अहम होता है। तो अभी इस वक्त जो मादियत है उसने ये बड़ा नुकसान किया और अब यानी हमारी जो रिवायती तहज़ीब थी उसके अंदर ताल्लुक़ बहुत अहम था। तो बहरहाल मैं अभी इस वक्त चाहूँगा कि आपके जहन में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कीजिए ताकि फिर उन पर बात हो सके। मैं कुछ बिखरी बातें मैंने ताल्लुक़ के अराउंड की हैं, आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर कीजिए मुझसे, मैं जानना चाहूँगा।
मेरा ये सवाल है, मेरा सिटी स्टॉकहोम है, और मेरे बच्चों के हवाले से ये सवाल है कि यहाँ पे बच्चों को स्कूल में ये सिखाया जाता है कि वो ही डिसाइड करेंगे और डिसाइड करना उनका बेसिक राइट है, तो मैं खुद भी इस चीज को समझती हूँ, लेकिन कई कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो घर में रूल्स के मुताबिक बताई जाएं तो बच्चे कहते हैं कि नहीं ये तो मैंने खुद डिसाइड करना है, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए?
हाँ, बहुत अच्छा, शुक्रिया महवित साहब। एक बात ये समझ लीजिए कि राइट्स की कॉन्शियसनेस जो होती है, या बहुत ज़्यादा अपने हक़ का एहसास, अपने हक़ से मोहब्बत, अपने हक़ के प्रोटेक्शन की फ़िक्र, अपने हक़ की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू और अपने हक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए ये एहसास कि मुझे अपने हकूक़ का हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये वो माइंडसेट नहीं है जो बंदगी के नतीजे में आइडियली होना चाहिए। बंदगी के नतीजे में पैदा होने वाला जो माइंडसेट है, उसमें अपने फ़राइज़ और या अपनी ऑब्लिगेशंस की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जब हम इस वक्त दुनिया चूँकि बहुत ज़्यादा अपने हक़ की आवाज़ उठाने, अपने हक़ को महसूस करने, अपने हक़ को डिफ़ाइन करने, अपने हक़ को प्रोटेक्ट करने की हमें हमें कॉन्स्टेंटली ये ट्रेनिंग मिलती है, और हम ये भूल जाते हैं। मतलब हमें इस बात का ज़्यादा एहसास होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और हमें इस बात का कम एहसास होता है कि मैंने क्या किया, मुझसे क्या हुआ, इसकी तरफ निगाह कम होती है। मेरे साथ क्या मामला हो रहा है, मुझे कैसा ट्रीटमेंट मिला, इसकी इसकी परेशानी ज़्यादा होती है, मुझसे क्या हुआ, इसकी परेशानी कम होती है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपके बच्चे को ये बात समझाई जा रही है कि ठीक है आपको अपने डिसीजंस खुद करने हैं, तो इसमें एक बात तो अच्छी है कि डिसीजंस अपने खुद करने चाहिए, या जो आपने बात कही वो। लेकिन ये कि अगर आपका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ बढ़ेगा, तो आपका बच्चा आपके साथ शेयरिंग करेगा, आपसे मशवरा लेगा, आपसे अपनी चॉइसेस जो है वो रिव्यू करवाएगा, आप मैटर करेंगे उसकी लाइफ में। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और उसको ये पता है कि एक एक नैरेटिव है जिसको हम एक लफ्ज़ में बयान कर सकते हैं, वो है पर्सनल स्पेस। तो जदीद जो जो ज़िंदगी है उसमें पर्सनल स्पेस की अहमियत प्राइवेसी से ज़्यादा होती है, और रिवायती माशरे में प्राइवेसी की अहमियत पर्सनल स्पेस से ज़्यादा होती है। यानी पर्सनल स्पेस ये है कि भाई आप, मतलब आप ये जो कॉन्शियसनेस है ना कि भाई ये मेरा एरिया है, इसके अंदर आप कौन हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, आप कौन होते हैं, आप मतलब मैं करूँगा ये, मैं खुद करूँगा। तो एक हद तक ये बात अच्छी है, ये इस लिहाज से अच्छी है कि ये बच्चे की अपनी एक खुदी है, बच्चे की अपनी एक अल्लाह ने उसके अंदर एक रखा है, अपने इख्तियार को वो महसूस करता है, उसका इस्तेमाल करता है। तो उसूली बात यह है कि आपके साथ ताल्लुक़ ऐसा हो कि वो अपने फ़ैसलों में आपसे मशवरा करना चाहे, और ये हम डिमांड नहीं कर सकते। आपसे भी ये डिमांड नहीं किया जा सकता कि आप अपने फ़ैसलों में अपने पेरेंट्स से लाजमी मशवरा करें, आपसे ये डिमांड नहीं किया जा सकता। इवन ये अगर कोई एक्सपेक्टेशन बना के बैठ जाए तो भी मुश्किल हो जाएगी। ये काम खुद ही होगा, ये काम उस वक्त होगा जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको स्पेस भी देंगे, आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे, और आपके साथ एक रिलेशनशिप होगा। इसी तरह इस वक्त बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, तो आप उनके साथ बातचीत का मौका निकालिए। ये जो बामानी कॉन्वर्सेशन होती है, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होती है, ये उस वक्त होती है जब हमें हम सेफ महसूस करते हैं किसी की प्रेजेंस में, हम अपने अंदर की बातें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी की प्रेजेंस में ऐसा महसूस करें कि ये मुझे जज करेगा, और तो फिर मैं खुद ही फ़िल्टर लगा के बातें करूँगा और फिर बहुत कम बात कर पाऊँगा, या मैं फिर बहुत कॉन्शियस होऊँगा कि अच्छा अगर मैंने ये बोल दिया तो ये सोचेंगे, तो फिर इससे बेहतर है कि मैं ये ना सोचूँ, मैं ये ना बोलूँ। तो घर में जो लोग होते हैं ना, उनको ये आसानी होती है कि वो अपनी बात आसानी से कह सकते हैं, और अगर कॉन्वर्सेशंस होती रहें तो ये मसले हल हो जाएंगे। तो आपके आपने जिन बातों का ज़िक्र किया उसमें कुछ उसका इलाज यह है कि आप रिस्पेक्ट करें, आप उससे बातचीत करें, आप उसके ऊपर मुसल्लत भी ना हो, यानी आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करने और उसको ओवर रूल करने या रूल करने की भी कोशिश नहीं करें, लेकिन आप उसके लिए अवेलेबल भी हों, आप उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी की कुछ शेयरिंग उसके साथ कीजिए, और इंशाल्लाह जैसे जैसे आपके साथ बॉन्डिंग बेहतर होती चली जाएगी, जैसे जैसे वो चीज़ों की यानी उसके पास इल्म आता जाएगा, तो उसकी चॉइसेस इंशाल्लाह बहुत अच्छी होंगी, आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आगे हम कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, बताइए।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा
वालेकुम
क्वेश्चन ये था कि एक टर्म यूज़ होती है लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, उस टर्म को थोड़ा डिफाइन कर दें, अगर कि अल्लाह के अर्श के साए में भी क़यामत के दिन 7 टाइप ऑफ पीपल होंगे, उनमें से एक वो होंगे जो जिनके बीच में लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह होगा, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन प्लीज़ अगर दे दें।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई भी मोहब्बत जो है वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर की चीज़ होती है। मतलब जब हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो बल्कि अगर हमारी मोहब्बत का जज्बा रिटर्न पर डिपेंड कर रहा है, यानी रिस्पॉन्स डिपेंडेंट जो लव है वो असल में लव नहीं है। मतलब यानी जो वैसे भी जो मोहब्बत है वो बेलॉस होती है, वो सेल्फलेस होती है, वो देने का अमल है। मोहब्बत जो है वो देने का अमल है, यानी अगर आप किसी को इसलिए चाह रहे हैं कि वो भी आपको जवाब में चाहे, तो ये आप बिज़नेस कर रहे हैं। आप मतलब आप बस बकौल इकबाल, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, तो एक बात तो ये है। लेकिन जब हम लिल्लाहियत का जौहर हमारे जज्बाए मोहब्बत को, जब हमारे जज्बाए मोहब्बत की पुश्तबानी लिल्लाहियत का जौहर कर रहा होता है, तो हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, बहुत ही फिनोमिनल, बहुत गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है। अल्लाह के लिए किसी को चाहने का मतलब बहुत ही एक अलग लेवल है। मतलब यूँ समझिए कि हमारी नफ्सियाती इस्तताअत, हमारा अखलाकी मर्तबा, हमारी सेल्फलेसनेस का जो मर्तबा है, वो लिल्लाहियत के जौहर से वो गैर मामूली तौर पर बुलंद हो जाता है। इसलिए कि आम मोहब्बतों का भी यानी हम अपने नफ्स की कमज़ोरियों के साथ किसी इंसान को चाहते हैं, हमारे नफ्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जब हम यानी वैसे तो हर मोहब्बत बहुत अजीम चीज़ है, मोहब्बत इटसेल्फ एक अजीम काम है, मोहब्बत इटसेल्फ एक बड़ा काम है। मोहब्बत करने वाला छोटा आदमी नहीं होता, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। तो एक आम सी मोहब्बत भी, अगर किसी इंसान को किसी से मोहब्बत है और वो मोहब्बत अपनी नौइयत में सेल्फलेस है, अगर वो मोहब्बत अदरवाइज़ वो मोहब्बत नहीं है, वो फिर कुछ और चीज़ है, वो फिर गर्ज़ है, वो फिर हविस है, वो कोई और चीज़ है, वो मोहब्बत नहीं है। तो मोहब्बत इटसेल्फ जैसे डिफ़ाइन होती है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अल्लाह की खातिर किसी को चाहने का मतलब ये है। अच्छा, आम मोहब्बतों के अंदर भी एक बात यह है कि मेरी मोहब्बत का जज्बा रिस्पॉन्स पे डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन मैं रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। ये आम मोहब्बत है, यानी तुम मुझे जवाब में मोहब्बत दो, तुम मेरे लिए कुछ करो, ये मैं तुमसे डिमांड तो नहीं कर रहा, लेकिन मतलब मैं मेरी मेरी डिज़ायर्स में है, लेकिन मेरी डिमांड में नहीं है। ये है आम मोहब्बत। लेकिन अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत का मतलब यह है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी वांट्स में भी नहीं है, डिमांड्स में भी नहीं है। मतलब मैं ये ना तो इसको डिमांड तो ये अगर मुझे किसी से मोहब्बत हुई है तो वो भी मेरे लिए कुछ करे, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो वो मोहब्बत जिसको हम अल्लाह के लिए नहीं भी कह रहे, यानी जो नॉर्मल सी मोहब्बत, यानी तो उस मोहब्बत की भी वो मोहब्बत उसी सूरत में मोहब्बत कहलाएगी जब मेरी मोहब्बत तुम्हारे रिटर्न पे कह लीजिए रिलाई नहीं कर रही। मैं मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ़ योर रिस्पॉन्स और इररिस्पेक्टिव ऑफ़ द रिटर्न्स ऑफ माई लव, आई एम लविंग समवन। लेकिन चूंकि इंसान हूँ, मेरे नफ्स की अपनी कैपेसिटी है, मेरे नफ्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो रिटर्न मुझे मिलता है, मेरी ख्वाहिश तो होती है कि मुझे रिटर्न मिले, मेरी डिमांड नहीं होती। लेकिन जब मैं अल्लाह के लिए करता हूँ ये मोहब्बत, तो मेरी ये ख्वाहिश भी नहीं होती कि मुझे रिटर्न मिले, मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। यानी मुझे शुक्रिया भी अगर कहा जाए तो मैं उसको नहीं चाहता कि मुझे शुक्रिया कहा जाए। यानी सूरह दहर की एक आयत है जिसमें बहुत वाज़े तौर पर यानी बहुत ही खूबसूरत आयत है वो, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ां वला शुकूरा। यानी हम तो तुमसे सिर्फ तुम्हें अल्लाह के लिए ये दे रहे हैं, मतलब हमें तुम थैंक यू नहीं कहो भाई, मुझे थैंक यू नहीं कहो, मैं नहीं चाहता। मतलब ये उसके दिल में होता है, और फिर उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उसे अगर अपनी मोहब्बत के रिस्पॉन्स में तकलीफ़ उठानी पड़े तो वो तकलीफ़ उसे तकलीफ़ नहीं देती, वो तकलीफ़ उसे बुरी नहीं लगती, वो उसके लिए इंजॉयबल होती है, वो उस खुशी से करता है। तो ये जो उसकी नफ्सियाती इस्तताअत है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है जब वो अल्लाह के लिए किसी को चाहता है, और ये बहुत बड़ा मर्तबा है इसकी। मैं समझता हूँ कि हर सच्चे आदमी में इसकी ख्वाहिश होनी चाहिए, इस एहसास के साथ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे। बहुत शुक्रिया अनम साहब, अच्छा सवाल है आपका। आगे चलते हैं, बताइए किससे लिया जाए सवाल। सूफिया साहिबा से ले लेते हैं, चलें।
अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा नाम सोफिया है, मैं रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से हूँ। मेरा छोटा सा एक प्रॉब्लम था, मैंने सोचा कि मैं इस पर रिपोर्ट पूछ लेती हूँ। मेरी बेटी है 12-13 साल की। जब आपकी मैंने सुनी ना वीडियो ज़रा, और जब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मेरे तक पहुँचा, तो मुझे काफ़ी फील हुआ कि मतलब मैं उससे काफ़ी मतलब उसके साथ जो मेरी डीलिंग रही है वो अच्छी नहीं थी। तो कुछ इस तरह से मुझे लगा कि शायद मैंने जैसे टॉक्स में सुना कि आप अपने बच्चे के साथ अपना ताल्लुक ठीक करें और उसको आप मतलब उस चीज़ को आप कंपनसेट करने की कोशिश करें ना। तो उसमें मैंने कुछ उसको मैंने ये कहा कि आप बेटी को मैंने बताया कि ये कम्युनिकेशन या ये रिलेशनशिप हमारा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैं ये मैंने गलतियाँ की हैं। मतलब तुम्हें जो आपको जो है मैंने जो चॉइस नहीं दी थी काम की, आपको आपके ऊपर मैंने स्टडीज का बहुत ज़्यादा बर्डन डाला, सारा कुछ किया। तो उसका ये हुआ कि जब उसको ये पता चला, और अब तो मतलब ये है कि अब उस तरह का सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये है कि अब उस पर थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ऐसा हो गया कि वो एक विक्टिम मेंटालिटी में चली गई है। एक तो ये थोड़ा सा हुआ है ये बातें करने से, और दूसरा ये है कि सम टाइम ना वो मुझे कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा सा किया, तो आपने मेरे साथ ऐसा सा क्यों किया। तो मैं उसको बताती तो हूँ कि मतलब मेरे से गलती हुई
जी
है और मुझे मैं इस चीज़ को कंपनसेट करना चाहती हूँ,
जी
मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये दो चीज़ें जो उसके अंदर आई हैं इससे थोड़ी सी वो एग्रेसिव भी हुई है और थोड़ी सी वो विक्टिम मेंटेलिटी में भी चली गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं अब इस चीज़ को किस तरह से उसको इस सिचुएशन से निकालूं।
अच्छा, एक पहले आप उसूली बात ये समझ लें, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरी जो मोहब्बत है वो मेरे महबूब के लिए काबिल एतबार हो सकी है या नहीं हो सकी है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा मैंने क्या कहा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अपनी बच्ची से मोहब्बत है, लेकिन आपकी बेटी आपकी मोहब्बत के ऊपर एतबार कर सकी है या नहीं कर सकी, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या हैं और आपके एक्शंस क्या हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे दिल में मोहब्बत होती है, लेकिन हमारे लफ्ज़ों का चुनाव, हमारा लहजा, हमारी कम्युनिकेशन और बाज़ औक़ात हमारी चॉइसेस और हमारे एक्शंस उसके दिल में हमारी मोहब्बत को, यानी मेरी मोहब्बत पर यकीन उसके दिल में पैदा हो, मेरी मोहब्बत पर एतबार उसको आ जाए, ये नहीं हो पाता। कभी कभी ये नुकसान होता है, और ये कैसे होता है मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक जुमला है, आप किसी बच्चे को बोलते हैं या कोई भी किसी बच्चे को बोलता है कि तुम झूठे हो। ये जो जुमला है ये सबसे ख़तरनाक जुमला है। इससे एक दूसरी चॉइस है आपके पास, आप कहते हैं, यानी अगर आपके बच्चे ने कोई गलत बात, गलत बयानी उससे हुई है, तो आप एक एक उसके ऊपर रिस्पॉन्स ये है कि तुम झूठे हो, दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि तुमने झूठ बोला। इन दोनों में कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? तुमने झूठ बोला और तुम झूठे हो, इन दोनों में कोई फ़र्क महसूस होता है? इन दो जुमलों में, ये दोनों ही जुमले बुरे हैं, इनमें एक ज़्यादा बुरा है। कौन सा वाला ज़्यादा बुरा है? पहला वाला, ठीक है। एक तीसरा जुमला भी हो सकता है, और वो जुमला ये है, तुमसे कुछ गलत बयानी हो गई है। तो अब तीन जुमले हो गए। एक जुमला ये है तुमसे कुछ गलत बयानी हो गई है, एक जुमला ये है कि तुमने झूठ बोला, और एक जुमला ये है कि तुम झूठे हो। ठीक है, इसी तरह मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में तीन जुमले बताता हूँ। तुम तो नमाज छोड़ देते हो, या तुम तो नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, ये एक जुमला है। दूसरा जुमला ये है कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने फला नमाज नहीं पढ़ी, और तीसरा जुमला यह है कि तुमसे नमाज छूट गई। इन तीन जुमलों में फ़र्क महसूस कर रहे हैं? तुमसे नमाज छूट गई और तुम तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हो। एक एक्सट्रीम यह है, तुम तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हो। और सेफ स्टेटमेंट यानी ये है कि तुमसे नमाज छूट गई, तुम कोई काम ठीक नहीं करते, ठीक है, ये एक जुमला है। दूसरा जुमला ये है कि तुमने ये काम गलत किया है, और तीसरा जुमला ये है कि तुमसे कुछ गड़बड़ हो गई है, या तुमने अपने तौर पर इस काम को करने की कोशिश की लेकिन हाँ इसके अंदर शायद कोई कमी रह गई है। तो ये जो तीन जुमले हैं, ये कहने का मतलब ये है कि हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम बात कैसे करें। और बच्चों को, बहुत से बच्चों को ये महसूस होता है कि मेरी अम्मा जान को मैं अज़ीज़ नहीं हूँ, मेरी कॉपी अज़ीज़ है, मेरे नंबर्स अज़ीज़ हैं, मेरी अम्मा जान मेरी रिपोर्ट कार्ड से मोहब्बत करती हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसे आपकी मोहब्बत का यकीन अपने लिए कैसे पैदा हो, इसके लिए अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स ठीक करने होंगे, अपने एक्शंस ठीक करने होंगे, और जो माजी में जो कुछ हुआ है उस एहसास से निकालने के लिए आप उसको ये बताइए कि पहले जो मुझे समझ आया मुझसे वो हुआ। बहरहाल मैं इसको, आपने जब ये बात कह दी है तो आप उसको बिल्कुल, ये बात ठीक है कि अगर आपने अपने बच्चे के साथ कोई ज़्यादती की है और आपको ये एहसास हो गया है तो आप अपने बच्चे के साथ बैठ के उस पर डिस्कशन करें, लेकिन आप ये बताइए कि जो मेरी समझ में आया था, मैं अपनी शऊर को, अपने फहम को मैं फॉलो कर रही थी, और अब मुझे समझ आया है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, मैं इंशाल्लाह इसको बेहतर कर रही हूँ। उस बच्चे को एहसास मज़लूमियत में ना जाने दें, यानी अगर वो बच्चा अपने आप को ये समझता है कि आप उसके साथ ज़्यादती करते हैं, तो आपका इस एहसास से वो कैसे निकलेगा? इस एहसास से उस वक्त निकलेगा जब आप उसकी अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करेंगे, आप उसको टाइम देंगे, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, आप दोबारा वो गलतियाँ नहीं करेंगे। और ये गलतियाँ क्या हैं? ये हम ज़बान से हमारी गलतियाँ होती हैं। मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि हर पेरेंट को अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनकी मोहब्बत अपने बच्चों की निगाह में मोतबर होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स की मोहब्बत पर एतबार नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। और बच्चों को छोड़िए, यहाँ जो 300-400 लोग मौजूद हैं, अगर आप लोगों को मैं आपसे ये पूछूं कि बहुत से लोग इस उम्र में, जो हमारी उम्र के लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स की मोहब्बत पर अभी तक मुतमईन नहीं होते। वो अभी तक कहते हैं कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे गलत किया, मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, मुझे फ़लाँ चीज़, वो जो परसीव्ड कह लीजिए वैल्यू या उसके हवाले से जो उसका परसेप्शन है, वो बहुत मैटर करता है। तो अल्लाह करे कि हम अपने मामलात को ठीक कर सकें, और बस रिस्पेक्ट करनी होगी बहुत ज़्यादा, और अपने अमल को ठीक करना होगा। और आपकी अच्छी बात है कि आपने बच्चे के साथ ये बात की, लेकिन इस एहसास से उसको निकालना होगा कि वो अपने आप को मज़लूम ना समझे। और आप उसे ये बताइए कि बस ठीक है, ये मेरी गलती है, पहले मैं ये समझती थी इस तरह, मैंने वो तुम्हारे भले के लिए किया था, और लेकिन बहरहाल मैं अब जब आप अपने अमल को ठीक कर लेंगी और उस पर कंसिस्टेंट होंगी इंशाल्लाह, तो वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं होगा अल्लाह ने चाहा। और दुआ कीजिए उसके लिए, दुआ करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने दो तीन एग्जांपल्स दी ना, कि तुम एक जुमला है तुम बदतमीज़ हो, दूसरा जुमला है तुमने बदतमीज़ी की, तीसरा जुमला है ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा जो आपने कहा, ये तीसरा जुमला, यानी ये तीन रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं ना, तुम बदतमीज़ हो, ये जुमला जो है ये बहुत ख़तरनाक जुमला है, ये बच्चे की ज़ात पर अटैक है, तुम बदतमीज़ हो। दूसरा जुमला है तुमने बदतमीज़ी की, ये जुमला ज़ात पे अटैक तो नहीं है, लेकिन इस जुमले में नियत फिर भी, यानी तुमने बदतमीज़ी की का मतलब यह है कि तुमने ये इंटेंशनली किया है, तुम जानबूझ के बदतमीज़ी करते हो, तुम बदतमीज़ हो, ये तो जुमला, यानी इससे ज़्यादा बुरा जुमला आप अपने बच्चे को नहीं कह सकते। तुम बदतमीज़ हो, तुम निकम्मे हो, तुम बेकार हो, तुम झूठे हो, तुम ये जो जुमले हैं, जो ये ज़ात पे अटैक हैं, ये बच्चे की ज़ात को आप, यानी समझिए कि ये यानी ज़ात को कत्ल करने की कोशिश है मेरे नज़दीक। यानी ये जुमला जो है, यूँ समझिए कि ज़ात पे, यानी एक ज़ात की एसेसिनेशन है, ज़ात को कत्ल कर देना है, ये अल्लाह माफ़ करे, बहुत ख़तरनाक जुमला है, ये उसकी खुदी को ख़त्म करने वाले जुमले हैं। तो अल्लाह करे कि अगर ऐसे जुमले कहे हैं तो हमें इसकी तलाफ़ी का मौका मिले, हम अपने अच्छे अमल से, अपने अच्छे बर्ताव से, अपनी हिकमत, शऊर और मिजाज की खूबसूरती से इस ये जो भी ज़ख़म हमारी ज़बान से हमारे बच्चे को लगे हैं हम उसको कॉम्पनसेट कर सकें इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ़ करे और अल्लाह इसका अज़ाले की मुझे तौफीक दे, ये एक बात है। लेकिन ये जुमला सबसे ख़तरनाक जुमला है, तुम बदतमीज़ हो। और लेकिन ये जो दूसरा जुमला है, तुमने बदतमीज़ी की, ये जुमला भी कोई कम ख़राब जुमला नहीं है, ये भी अच्छा खासा ख़राब जुमला है। इस जुमले में क्या ख़राबी है? तुमने बदतमीज़ी की, इस जुमले में ख़राबी ये है कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारी इंटेंशन ठीक नहीं थी, तुम जानबूझ के इंटेंशनली, तुम्हारी नीयत ही गलत थी, मतलब तुमने ये जानबूझ के किया है। तो ये बात यानी सिर्फ एक्शन तक महदूद नहीं है, ये उसकी इंटेंट तक, यानी मेरा जो रिस्पॉन्स है सिर्फ एक्शन को हिट नहीं कर रहा, इंटेंट को भी हिट कर रहा है, तुमने बदतमीज़ी की। एक तीसरा रिस्पॉन्स है और वो रिस्पॉन्स ये है कि बेटा आपने ये जो अमल किया, आपने ये जो बात की, इससे मुझे तकलीफ़ हुई, ये बात मुझे मुनासिब नहीं लगी। आप ये बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि बेटा ये जुमला कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, ये बात कुछ ठीक नहीं है, ये बात ये या आपसे कुछ गलत बात हुई है। अगर आप ये जुमला भी कहते हैं, यानी ये जो ये सारे रिस्पॉन्सेस बेहतर हैं उन दोनों रिस्पॉन्सेस के मुकाबले में। यानी अगर आप ये कहते हैं कि आपकी इस बात से मुझे तकलीफ़ हुई, ये रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं। आप ये रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि बेटा ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, आपकी बात से मुझे तकलीफ़ हुई, आप ये भी कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि बेटा ये आपकी ज़बान से कुछ गैर मुनासिब बात निकल गई, आप ये भी कह सकते हैं। ज़रा देखेंगे आपने आपने क्या कहा, आप ज़रा इसको देखिए, ये सब बातें आप कह सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो जवाबात हैं, हमारे वर्बल रिस्पॉन्सेस हैं या हमारी चॉइसेस हैं, उससे हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत मुश्किल में चले जाते हैं। फिर उनके अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, यानी वो जब वो अम्मी और अब्बा बनेंगे ना, तब उन्हें समझ आएगा कि हम जो कह रहे थे अच्छा उसकी क्या वजह थी। अभी तो इस अम्मी अब्बा बनने से पहले की जो लाइफ है, जो कि 25 साल कम से कम है, यानी तकरीबन ऑन एन एवरेज, तो उस वक्त तो उन्हें नहीं समझ आएगा कि मेरी अम्मी जो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी और मेरे अब्बा जो मेरे पीछे पड़े रहते थे वो मेरी मोहब्बत में पड़े रहते थे और मुझे हर वक्त टोकते रहते थे, वो उसे नहीं समझ आएगा। तो इसको हमें समझना होगा। जी बताइए।
अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम।
जी मेरा सवाल ये है, और मैंने काफ़ी जगहों पे ये सुना है कि हम लोग मॉडर्न जो वेज हैं, जो गैजेट हैं, उनको इस्तेमाल करने को कंडेम करते हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हम उनको इस्तेमाल ही ना करें। तो मेरा सवाल यही होगा कि अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या एहतियातें बरतनी चाहिए, या बिल्कुल ही ना करें?
बहुत अच्छा सवाल। हमारी असल जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को बामानी बनाएं, और बामानी ज़िंदगी बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क मैं प्रपोज़ करता हूँ वो रिलेशनशिप 5 डायमेंशंस पे हमें रिलेशनशिप निभानी है। अपने साथ ताल्लुक़, अपने के साथ ताल्लुक़, अपनों के साथ ताल्लुक़, दूसरों के साथ ताल्लुक़, और फितरत या कायनात के साथ ताल्लुक़। मसला ये होता है कि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कभी कभी इन ताल्लुक़ के रास्तों में ऑब्स्टिकल बनने लगती हैं। यानी मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जमात के लिए खड़े होते हैं, नमाज का वक्त है, अभी जमात करवाएंगे, और अभी अचानक एक ख़्याल आता है और चले जाते हैं अपने हुजरे में। फिर कुछ देर के बाद वापस तशरीफ़ लाते हैं, और फिर सहाबा के दिल में एक सवाल है कि क्या हुआ, खैरियत तो है, आप नमाज़ पढ़ाने खड़े हुए थे, अचानक चले गए, खैरियत क्या हुआ? और फिर पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस लम्हे यह ख़्याल आया कि घर में कुछ गोल्ड कहीं से आया है, और ऐसा ना हो कि नमाज के दरमियान में इसका ख़्याल आए। तो वो अंदर जाते हैं और उस गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आते हैं ताकि अब नमाज यकसुई के साथ और तसल्ली के साथ पढ़ सकें। ये इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसाने कामिल की ज़िंदगी का अपना वाकया है। इसी तरह एक और वाकया है कि एक सहाबी जो हैं वो एक बाग उनका था और वो उसमें नमाज़ पढ़ रहे थे, और नमाज के दौरान में उनको ख्याल आ गया अपने बाग के हवाले से, या कहीं निगाह चली गई बाग में, और एक लम्हे को नमाज में कुछ कुछ थोड़े से पीरियड के लिए कुछ जहन कहीं और शिफ्ट हो गया, और उस जो 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 गार्डन की अट्रैक्शन थी उस तरफ कहीं चला गया, और वो एकदम उसके ऊपर जब नमाज से फारिग हुए तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी नमाज की क्वालिटी और मेरी नमाज में कंसंट्रेशन, मैंने इतना अच्छा, इतना खूबसूरत और इतना अट्रैक्टिव बाग मैंने बना लिया है और अल्लाह ने मुझे उसका मालिक बनाया है कि मेरी उस तरफ निगाह चली गई या उस तरफ मेरा जहन चला गया। इतने परेशान हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज इस बाग की वजह से ख़राब हुई थी, ये बाग मैं आपको देता हूँ, इसको अल्लाह के रास्ते में, इस बाग को बस ले लीजिए और इस बाग को बेच के ये, मतलब उस बाग को उसी वक्त सदका कर दिया। ये खैर बहुत ही एक्सेप्शनल लोग थे, यानी ये एक बिल्कुल आखिरी सतह है। अच्छा, अब मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड अभी आता हूँ। हमारी जेब में एक छोटी सी डिबिया है जिसको मेरे एक दोस्त जिगर का टुकड़ा कहते हैं, और जिगर के टुकड़े का मतलब यह है कि जिसके बग़ैर हमें अपना वजूद नामुकम्मल महसूस हो। हर थोड़ी देर के बाद जिगर के टुकड़े को देखने का दिल चाहे, हर थोड़ी देर के बाद ये ख्वाहिश हो कि जिगर का टुकड़ा कहाँ रह गया, जिगर का टुकड़ा नज़र नहीं आया काफ़ी देर से, जिगर का टुकड़ा किस हाल में है। तो जिगर के टुकड़े को बार बार छूते हैं, बार बार देखते हैं, हाथ फेरते हैं जिगर के टुकड़े पर, आँखें जमाते हैं जिगर के टुकड़े पर, और नमाज के अंदर हमसे ये मुतालबा होता है कि भाई इसको ज़रा खामोश कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लीजिए। और मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जब मस्जिद में हमसे ये मुतालबा होता है कि ये इस मोबाइल को साइलेंट कर लें, तो ये मुतालबा इस असम्पशन पे खड़ा है कि इस मोबाइल की जो रिंग है, रिंग टोन जो है, वो चूँकि नमाजियों को डिस्टर्ब कर सकती है इसलिए साइलेंट कर लीजिए। लेकिन वाइब्रेशन मोड पर जब ये आपके टांग पे या आपकी जेब में थोड़ी सी वाइब्रेशन करे तो इससे आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, मतलब दिस इज़ इट्स ओके, मतलब आप साइलेंट कर लीजिए, वाइब्रेशन मोड पे कर लीजिए, आपको पता है अच्छा ठीक है तीसरी रकत में, अच्छा ठीक है मैं सूरह माउन पढ़ रहा था तो एकदम वाइब्रेशन हुई तो मुझे समझ आ गई, अच्छा हाँ ठीक है, फिर दोबारा वाइब्रेशन हुई चौथी रकत में, अच्छा मुझे पता लग गया, सलाम फेरा तो पता लगा तीन दफ़ा वाइब्रेशन हो चुकी है, यानी तीन कॉलें आ चुकी हैं, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ भाई, ये हमारी कैफियत होती है। मैं जो बात अर्ज़ करने का मतलब यह है कि ज़िंदगी की मानवियत जो है वो ताल्लुक़ की जो पांच जहतें हैं, ये ताल्लुक़ की पांच जहतों में से मैं अभी सिर्फ इंसान और बंदे की जो फॉर्मल मीटिंग है उसके अहवाल में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने साथ ताल्लुक़, इस वक्त किसी इंसान को किसी ऐसी तन्हाई का तजर्बा कब हुआ है जिसमें वो कम अज़ कम 45 मिनट्स तक तन्हाई में हो और किसी गैजेट से उसका कोई वास्ता ना हो और वो इत्मीनान से बैठा हो और खुश हो और वो जिगर के टुकड़े को ना देख रहा हो। मतलब हो ये रहा है कि उसकी तन्हाइयाँ ख़राब हो गई हैं। हमारी ज़िंदगी में ये जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेजन है ना, उससे जो नुकसानात हुए हैं इसका हम अंदाज़ा नहीं कर पा रहे, और जो हमारे यानी क़ुरून उला के जो लोग थे उनका उनके पास जो माशाअल्लाह शऊर और ईमान इस सतह का था कि वो चीज़ें जो मतलब यानी इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना बाग की और ये मनाजिर फितरत की, ये तो इस वक्त जिस किस्म के हम कह लीजिए शिकंजे में हैं, तो हमें थोड़ा सा इस हवाले से ये सोचना होगा कि मेरी ज़िंदगी में जब कंफर्ट बढ़ती है, मेरी ज़िंदगी में जब टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस बढ़ती है, तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से अफेक्ट होती है, मुझे इसको देखने की ज़रूरत है, कहाँ से किस तरह अफेक्ट हो सकती है और मैं उससे कैसे बचूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन इस बात को देखें कि एक उसूली बात ये समझ लें कि अननेसेसरली एडवांसमेंट सीख करना, इससे हम गुरेज करें, अननेसेसरली और अनरीजनेबली कम्फर्ट सीख करना, हम उससे गुरेज करें, तरक्की की दौड़ में बिल्कुल ब्लाइंडली भागना ना शुरू कर दें, हम ये सोचें कि मेरे लिए सबसे अहम चीज़ कुछ और है, और उसके साथ फिर हम ये देखें, मतलब हम अपनी आइडियोलॉजिकल टर्म्स को ज़िंदा रखने की कोशिश करें, और ठीक है हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, हम अभी भी इस वक्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब इस वक्त टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से हम केयरफुल रहें और हम देखें कि हमें कितना, यानी आप सोचिए कि ज़िंदगी की मानवियत कैसी चीज़ होती है, इसको ज़रा एक और अंदाज से समझाता हूँ मैं, एक और मिसाल के ज़रिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी के बारे में पता लगा कि ये पूरी रात जो है वो नमाज में खड़े रहते हैं, पूरी रात तहज्जुद पढ़ते हैं, बल्कि उनकी वाइफ ने कंप्लेन की कि भाई ये तो पूरी रात ही तहज्जुद में लगा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ऐसा नहीं करो, एक पार्ट ऑफ योर नाइट जो है ना, एक हिस्सा रात का, उसको इस काम में लगाओ, लेकिन पूरी रात इस काम में नहीं लगाओ। और कुछ रोज़े रखो कुछ नहीं भी रखो, मतलब ये नफली रोज़ों के बारे में बात हो रही है। तो जब इतने कीमती काम को हमसे ये कहा गया कि ये हर वक्त इसको ना करो, इसको इससे निकलो, कुछ इसको छोड़ो, तुम्हारी और ज़रूरियात भी हैं, तुम्हारे और तकाजे भी हैं, तुम्हारी और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पे हक है और तुम्हें कुछ और भी ज़िम्मेदारियाँ तुम्हारे साथ हैं, तो उनकी अदायगी के लिए तुम ऐसा ना करो कि पूरी रात नमाज़ में गुजार दो। तो मैं ये समझता हूँ कि मुरब्बी आज़म ने अपने साथियों को पूरी रात नमाज में वो ना गुजार दें, यानी कितना बढ़िया अमल था उसके लिए जिस तरह समझाया, आज हमारी नौजवान पूरी रात किसी गैजेट के साथ गुजार देते हैं, पूरा दिन किसी गैजेट के साथ गुजार देते हैं, हम इसको मतलब हमारे पास वो शऊर नहीं है कि हम इसको एड्रेस कर सकें। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ है कि हम बिल्कुल यानी ऑब्सेस्ड हो गए हैं उन चीज़ों से, तो हमें इसको निकलने की ज़रूरत है। हमें हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी ज़िंदगी की मानवियत इसको बरकरार रखने के लिए, यानी मैं एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल दी मैंने नमाज की, मैंने एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल दी मैंने रोज़े की, कि इसके ऊपर कहा गया कि भाई आप ज़रा ब्रेक दें, मतलब आप सिर्फ यही नहीं करें, आप थोड़ा सा और चीज़ें भी करें, औरों का भी हक है, और भी चीज़ें हैं, और भी काम। तो इस वक्त तो हमारे साथ हुआ यह है कि हम ज़िंदगी की मानवियत कैसे डिफ़ाइन होती है इस पे गौर नहीं कर सके। तो बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि हर वो चीज़ जो मुझे गौर व फ़िक्र और तदब्बर से हटाने का मुझे बन रही है, उसके इस्तेमाल में मुझे बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अट्रैक्शंस जो होती हैं वो असल में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, अच्छी तो लगती हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। तो बस अट्रैक्शंस देख के खुश ना हों बल्कि परेशान हों, मतलब फ़िक्रमंद हों कि अच्छा इतना इतनी अट्रैक्शंस मुझे, यानी अट्रैक्शंस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं। प्लेजरेबल डिस्ट्रैक्शंस को अट्रैक्शंस कहते हैं।
जी बताइए, आमना उमर उमर साहिबा बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है?
मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मेरा बेटा 8 साल का है, उसके कुछ फ्रेंड्स के पास मोबाइल आया है, उनके पेरेंट्स ने उनको दिला दिया। तो ये क्वेश्चन उसने मुझसे बहुत बार किया और मैंने उसको हमेशा ये कहा कि बेटा जब आप 18 ईयर्स के होंगे तो फिर मैं आपको मोबाइल दूंगी। तो आइदर माई लाइक आंसर इज फाइन कि ये सही था, या मतलब किस एज में बच्चे को मोबाइल देना चाहिए इंडिपेंडेंटली आप मतलब शेयर करते हैं, जैसा मैंने भी शेयर किया अपनी मदर और बहन के साथ, लेकिन इंडिपेंडेंटली बच्चा मतलब बच्चे की केस कौन सी एज ऐसी होती है कि उसको मोबाइल दिया जाए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे रिस्पॉन्सिबल हों, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आई नो कि कुछ मतलब आप बच्चों को घर में छोटे छोटे काम दें और उनको इस तरह से अपने साथ इन्वॉल्व करें जो कि इनकरेज करता है बच्चे को, लेकिन मतलब क्या ये बड़े हो के रिस्पॉन्सिबल बच्चे बनते हैं, या लाइक मुझे इस बारे में पूछना था कि ये किस तरह से वर्किंग होती है इसकी।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आमना साहिबा। जो मोबाइल का आपका सवाल है, आपने जो बच्चे को जवाब दिया है कि 18 साल के जब आप हो जाएंगे तो मैं आपको मोबाइल उस वक्त मिलेगा, अभी आप 8 साल के हैं, इस जवाब से एक फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा ये है कि बच्चे की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, यानी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता कि आप दिलाएं, आपने बहुत एक ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी एक्सपेक्टेशंस यानी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएं या एक्सपेक्टेशंस ना रहें, ये तो एक तरह से आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करने की कोशिश की इस हवाले से कि भैया ठीक है, ये आप वाई शुड यू एक्सपेक्ट कि मैं इस एज में आपको मोबाइल दिलाऊं, आप मतलब आपको ये मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप इस एज में मुझसे मोबाइल लें, ये आपने एक बात। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि मोबाइल दिलाने का ताल्लुक एज के साथ नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ को हासिल करने का की वजह ये होती है कि उसकी आपको ज़रूरत होती है। तो जब उसको ज़रूरत हो तो मतलब आप कोई ख़ास एज नहीं है कि भाई ठीक है फ़लाँ एज के आपको यानी ये एज होगी तो ये चीज़ मिलेगी, बल्कि जब आपकी ज़रूरत होगी तो आपको चीज़ मिलेगी, आपको ज़रूरत, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि इसके साथ एक ऐसे मुकालमे की ज़रूरत है जो इसको इस लेवल पे पहुँचाए कि सोसाइटी में तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे और मोबाइल जो है बहुत फैसिनेट करता है, इसलिए कि मोबाइल के अंदर बहुत कुछ आप करते हैं, बहुत कुछ आप उसमें गेम्स भी खेलते हैं, उसमें कम्युनिकेशन भी करते हैं, उससे कुछ फ़ायदे भी उठाते हैं, तो बहरहाल ये एक फैसिनेट करता है बच्चे को। तो आपकी एक ऐसी कॉन्वर्सेशन उसके साथ होनी चाहिए जिसमें उसको ये बात समझ आए कि ये मेरी चूँकि ज़रूरत नहीं है और मेरे लिए ये एक डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनेगा या मेरे लिए ये एक मुश्किल का बाइस बनेगा, लिहाजा मैं इस एज में आपको अभी फ़िलहाल नहीं दे सकती, ये हम इसको नहीं ख़रीद रहे। और दूसरी बात ये कि आपसे ये सवाल ज़रूर किया जाएगा कि आपने अपने माल का क्या इस्तेमाल किया। आप अपने पैसों से जब एक ऐसा खर्च करती हैं उसको अपना, जिसका कोई मकसद नहीं है, तो आप उसके लिए आंसरेबल हैं। आप अपने, यानी आप इस बात के लिए अकाउंटेबल हैं कि आपने अपने पैसे को वाइजली स्पेंड किया या नहीं किया, रिस्पॉन्सिबली स्पेंड किया या नहीं किया। तो सिर्फ इस वजह से कि ये अफोर्डेबल है इसलिए हम दिला रहे हैं, ये वजह नहीं होनी चाहिए, बल्कि वजह ये होनी चाहिए कि ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत है, इसका कोई काम है, इसका कोई इस्तेमाल है, मकसद है, तो ठीक है, हम इसको दिलाएंगे। तो और बच्चे को ये महसूस ना हो कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही, बल्कि बच्चे को ये महसूस हो कि आप उसकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन को ऐड नहीं करना चाहती और आप बच्चे पे ट्रस्ट करती हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस फ्री लाइफ अगर गुजर सकती है तो इसको हम मुमकिन बना रहे हैं। तो ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर ये आपके बच्चे को ये कॉन्वर्सेशंस नहीं हुई और इंटेलेक्चुअली इस बात की वजह उसे समझ में ना आए, तो फिर उसे ये महसूस होगा कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, वो मज़लूम समझेगा अपने आप को, उसे लगेगा कि बाकी सब बच्चों को तो मिला हुआ है, मुझे नहीं मिला हुआ। तो हमारे बच्चों की ताल्लुक़ की ज़रूरियात भी हैं, हमारे बच्चों की शऊर की ज़रूरियात भी हैं। तो शऊर की ज़रूरियात बातें करने से और उसूल की सतह पे बातें करने से, चीज़ों की वजूहात पे गौर करने से, एक अच्छी रीजनिंग की एक प्रोसेस में जाने से इंशाल्लाह पूरी होती हैं। और ताल्लुक़ की ज़रूरियात बहरहाल बच्चों को टाइम देने से और उनसे मोहब्बत करने से पूरी होती हैं, तो ये काम कीजिए। बाकी आपका सवाल ये है रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेगा। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो जब हम उन पर ट्रस्ट करते हैं ना, जब हम उन्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने देते हैं, यानी जिस डोमेन में वो कर सकते हैं। देखें, मोबाइल दिलाना आपका डिसीजन है, उनका डिसीजन नहीं है। मतलब ये तो मेरा, मैं अपने माल से क्या करूं, मैं अपने पैसों को क्या करूं, मैं अपने पैसों से क्या खर्च करूं, स्पेंडिंग, मैं अपने पैसे की जो स्पेंडिंग है वो मेरा डोमेन है, तो मैं अपने पैसों की स्पेंडिंग कैसे करूं ये मुझे देखना है। तो लेकिन बच्चा अपने टाइम को कैसे स्पेंड करता है, ये बच्चे का डोमेन है। बच्चे को कुछ फ्री टाइम मिलना चाहिए, बच्चे को कुछ आप ज़िम्मेदारी का एहसास देना चाहती हैं, आप अपने कामों में उससे मशवरा लें और आप उस पर एतमाद करें, आप उसको कुछ फ्री टाइम दीजिए जिसमें वो अपने दिन को प्लान कर सके और उसकी ओवर करेक्शन से बचिए। आप हर वो गलती जिसको वो खुद समझ सकता है और करेक्ट कर सकता है उसको बार बार उसके पीछे ना पड़े, इंशाल्लाह ठीक कर लेगा, तो इतना मुश्किल नहीं होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला उस वक्त आता है जब बच्चे 15 साल की उम्र तक एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है और बिल्कुल उनको फ्री टाइम नहीं दिया जाता, और फिर जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब मैं अपने इस टाइम में वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ कि करूँ, तो उनको थोड़ा सा यानी मुश्किल होती है उस वक्त, उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बताइए, यहाँ पर सबीन साहिबा हैं, बताइए आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दुबई से हूँ और मेरे चंद दो एक सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है, क्या परवरिश जो है वो फितरत को कंट्रोल कर सकती है? मतलब एक इंसान है, उसकी एक फितरत है, तो क्या परवरिश उसे कंट्रोल कर सकती है? और दूसरा सवाल मेरा अपने बच्चे के हवाले से है जो कि अब 6.5 साल के हैं। तो मेरा सवाल ये है कि बाज़ुका माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं, पढ़ने में भी अच्छी हैं, ज़हीन है, रिस्पॉन्सिबल हैं और हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ कि एग्रेसिव हो जाती हैं। जहाँ तक मैं उसकी वजह समझती हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग वूमन थी, लाइक जब बेटी मेरी पैदा हुई तब से लेकर 8 साल तक मैं वर्किंग वूमन रही हूँ। मतलब मुझे 1 साल हुआ है मेरी जॉब अभी ख़त्म हुई हुई, तो अब मैं अपनी बेटी के साथ जो है टाइम स्पेंड करना शुरू किया है। तो ये एक लंबा अरसा जो उसकी मतलब जो था मेरे और उसके दरमियान डेवलपमेंट का, वो थोड़ा मुतासर मुझे नज़र आता है। तो मेरा आपसे सवाल यही था कि एग्रेसिवनेस की वजह, या मतलब बहुत ही वो पोलाइट है, नॉर्मली अगर आप उसे देखें बात करें वो बहुत पोलाइट नेचर है, रिस्पॉन्सिबल भी और
चलिए,
लविंग भी है।
देखिए पहला जो सवाल आपका है वो थोड़ा सा इल्मी एक तर्जिया मांगता है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर बता देता हूँ। जो आपने सवाल नेचर और नर्चर का जो एक बहस है जो चलती है कि हम परवरिश के ज़रिए, जिसे हम नर्चरिंग कहते हैं, क्या नेचर को तब्दील किया जा सकता है या परवरिश जो है वो फितरत पर हावी आ सकती है, ये एक सवाल है। नेचर वर्सेस नर्चर एक बहुत ही पिछले चंद सौ साल से एक डिबेट पैदा हुई है। पहले मैं आपको ये बात अर्ज करूँगा कि ये पूरी डिबेट जिस एसम्पशन पे खड़ी है वो एसम्पशन ये है कि कुछ बच्चों की फितरत अच्छी होती है और कुछ बच्चों की फितरत अच्छी नहीं होती। हमारे ईमानी तनाजुर में हम अपना पर्सपेक्टिव जब ठीक करेंगे तो इस डिबेट से बाहर निकल आएंगे, बल्कि कुछ और ऊपर आ जाएंगे और हमें एक और अपने करने का काम समझ आएगा। देखिए हर बच्चा अच्छी फितरत पे, सही फितरत पे, मुसलमान फितरत पे या नेक फितरत पे या फितरत खैर पे पैदा होता है, ठीक है। तो ये जो बच्चा फितरत खैर पे पैदा होता है, इसको ज़िंदगी में कुछ ऐसे अवामिल होते हैं, इसको डिस्ट्रैक्शंस मिलती हैं, इसकी परवरिश में कुछ मसले मसाइल होते हैं या इसके साथ कुछ और गड़बड़ होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है, फिर उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको यहूदी या ईसाई या कुछ और बना देते हैं, वो इस मफहूम की बात है। लेकिन उस हदीस में ये नहीं कहा कि उसके पेरेंट्स उसे मुसलमान बना देते हैं, ये नहीं कहा, इसलिए कि मुसलमान तो पहले से होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं उसे किसी और रास्ते की तरफ ले जाते हैं। तो एक है फितरत और एक चीज़ है हिदायत, आसमानी हिदायत। तो हिदायत क्या करती है, आसमानी हिदायत क्या करती है, इंसान की उसी फितरत को नर्चर करती है, उसकी उसको कमाल पर पहुंचाने का इंतज़ाम करती है। तो हम सब के अंदर नेकी को पसंद करने, नेकी पे चलने और बुराई से बचने का जो पहला इंतज़ाम अल्लाह ने किया है वो फितरत है, और जो फाइनल इंतज़ाम अल्लाह ने किया है वो हिदायत है। तो हिदायत क्या करती है, हमें हमारी फितरत की तरफ वापस लौटाती है। वो लोग जो इस्लाम कबूल करते हैं उनको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रिवर्ट। क्यों कहते हैं, किस चीज़ पे रिवर्ट हो गए, वो वापस अपनी फितरत असली पे वापस आए हैं। तो ये जो डिबेट शुरू हुई थी के नेचर वर्सेस नर्चर, परवरिश क्या फितरत के ऊपर हावी आ सकती है, तो असल बात यह है कि फितरत तो होती ही अच्छी है। मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप इस डिबेट से बाहर निकलें और आप ये समझें कि फितरत में मसला नहीं है, फितरत तो बहुत अच्छी है और हर इंसान की फितरत अच्छी है और हर इंसान नेक होता है। हम किसी भी इंसान को उससे ज़्यादा नेक नहीं बना सकते जितना वो पहले से फितरी तौर पर होता है। यानी हज का सबसे बड़ा इनाम यह है कि हम ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी बॉर्न हुए हैं, न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न को एडल्ट के ऊपर क्या फौकियत और फजीलत हासिल है, न्यू बॉर्न बेबी को हमारे ऊपर जो फजीलत और फौकियत हासिल है उसकी वजह उसकी इनर प्योरिटी है, वो अपनी फितरत के ऊपर है, वो बिल्कुल प्योर है और हम आलूदा हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो जो परवरिश का उसूल है, परवरिश का उसूल जो है वो तज़किए के ऊपर है, परवरिश का उसूल जो है वो उसके दाइयात नफ्स को या उसकी इंक्लिनेशंस को एक सही डायरेक्शन की तरफ लाने में है, वो उसको एक अच्छी मॉडलिंग और अच्छी फैसिलिटेशन के ऊपर है। तो परवरिश अच्छी होनी चाहिए, बाज़ोकात परवरिश में ख़राबी होती है और वो अपनी फितरत से बगावत कर बैठता है या अगेंस्ट द फितरत चलना शुरू कर देता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम मतलब ये ठीक ठाक प्रॉब्लम, रहम जो है ये हम सब के अंदर फितरत में रखा है। हिदायत क्या करती है, उस रहम के जज्बे को नर्चर करके ईसार और क़ुरबानी की हाइएस्ट पॉसिबल मिसालें देने के काबिल बनाती है, अखलाक को एक रफ़त अता करती है। और ये यानी अगर हमारे अंदर फितरी तौर पर जज्बा रहम मौजूद है और हिदायत जब आती है, हमें आसमानी हिदायत मिलती है, तो ये जज्बा रहम को नर्चर करके और उसके एक आला तरीन अखलाकी सतह पर उसको बुलंद करने में कामयाब हो जाती है। तो बस ये वाली बात है। तो इंशाल्लाह ये इतना यानी फितरत पर ट्रस्ट किया जाए, मगरिब का जो पैराडाइम है उसमें इंसान की फितरत पर अभी तक उन्हें यानी फितरत को इंटरप्रेट करने में ही प्रॉब्लम है, सारा मसला ये हुआ है। यानी आज से 40 साल पहले बहुत सारे ऐसे मसाइल जो इस वक्त वेस्ट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं नॉर्म के तौर पे, 40 साल पहले उनको एक सिकनेस के तौर पे तसव्वुर किया जाता था। मसलन होमोसेक्सुअलिटी आज से 40 साल पहले डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी में एक प्रॉब्लम के तौर पर देखा जाता था, आज जो है उसको नेचर से इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो मगरिब का प्रॉब्लम यह है कि वहाँ फितरत की इंटरप्रटेशन में सीरियस एरर्स हुए हैं, सीरियस मिस्टेक्स हुई हैं, क्योंकि जब उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि इंसान को पैदा किस लिए किया गया है, तो उनको ये भी नहीं समझ में आया कि इंसान के अंदर जो इंक्लिनेशंस हैं उनमें से कौन सी इंक्लिनेशन बिल्कुल ओरिजिनल और नेचुरल है और कौन सी इंक्लिनेशंस जो हैं वो उसके नफ्स की खराबी है या प्रॉब्लम है। तो बाकी आपका जो वो बच्चा है जिसमें आपने कहा कि वो बदतमीज़ी करता है, तो एक बात आप समझ लें सब, एक बदतमीज़ी, जब भी बच्चा बदतमीज़ी करता है या उससे कोई गलत हरकत सरजद होती है, कोई कोई गैर महज़ब चीज़ सरजद होती है, मिसाल के तौर पर वो अपनी बहन को मार रहा है या वो अपनी वालदा से कोई गलत जुमले में बात कर रहा है या शाउट कर रहा है या कोई और ऐसी गलत काम कर रहा है, तो एक बात ये समझ लीजिए कि बदतमीज़ी को इमीडिएट रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है। बदतमीज़ी को बहुत सी सिचुएशंस में, ख़ास तौर पे जब बच्चे 7 ईयर्स से बड़े हैं, तो फिर तो ये यानी आप एक उसको नोटिस लीजिए, उसको देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बदतमीज़ी को इग्नोर करना भी, यानी आपको कभी कोई सिचुएशन होती है आप देखें कि अगर वो अनइंटेंशनल है तो आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अगर एक इंटेंशनल चीज़ है जो या आपको लगता है कि वो उसको कर रहा है और डेलिबरेटली कर रहा है, बार बार कर रहा है, आप उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। आप उसको ये ज़रूर बताइए कि बेटा ये आपकी ये जुमला ठीक नहीं है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इस बात से मुझे तकलीफ़ हुई, ऐसे बात नहीं करते, ये आपकी बड़ी बहन है, ये आपकी मदर हैं, आप ऐसे उनको नहीं कह सकते, ये बात आप उनको ज़रूर बताइए। और ये बताना अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि किसी बदतमीज़ी को इमीडिएट रिस्पॉन्स देना बदतमीज़ी का इलाज नहीं होता। बदतमीज़ी का इलाज कुछ और चीज़ है, बदतमीज़ी को इमीडिएट रिस्पॉन्स देना कुछ और चीज़ है। तो जब बच्चा कोई बदतमीज़ी अगर उससे सरज़द हो रही है तो उसको एक इमीडिएट रिस्पॉन्स देना चाहिए कि बेटा ये इस तरह के लहजे में मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे बात करें। बट अगर बच्चा शाउट कर रहा है आप बहुत फ़ौरन बताइए, एक्सक्यूज़ मी, मैं नहीं चाहता कि आप इस लहजे में मुझसे बात करें, मैं इस तरह से मैं नहीं चाहता, आप मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को पोलाइटली करें। आप ये बात उसे बिल्कुल बताइए, उसी वक्त बताइए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात हमें समझने की ज़रूरत है कि किसी बच्चे के अंदर ये क्या होता है कि वो अपने लहजे पे, अपने मिजाज पे काबू नहीं रख पाता और उसके अंदर एग्रेशन पैदा होता है, या उसकी ज़बान से दूसरे लोगों वो बदतमीज़ी होती है, या वो एक उस वो अपने रवैयों में जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है बच्चों के अंदर वो ये है कि बच्चों का ताल्लुक़ किसी ऐसे इंसान के साथ जो मिजाज की खूबसूरती पर हो नहीं बन पाया। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो अनहर्ड फील करता है अपने आप को, यानी उसे लगता है कि उसको किसी ने सुना ही नहीं है, या एक बच्चा ऐसा है जिसको किसी मोहब्बत की भूख ही उसकी पूरी नहीं हुई है, तो इस तरह के बच्चे के साथ बहरहाल एक प्रॉब्लम रहेगा। इस बच्चे को हम कंट्रोल करके या इमीडिएट रिस्पॉन्स दे के उसको तहजीब नहीं सिखा सकते। इस बच्चे को बस हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपका ये रवैया जो है वो इस माहौल में पसंद नहीं किया जाएगा, ये हम एक उसको बात कह सकते हैं, लेकिन वो अपने रवैयों में महज़्ज़ब हो उसके लिए उसको गले लगाने की ज़रूरत है, उसके लिए उसको प्यार करने की ज़रूरत है, उसके लिए उसको सुनने की ज़रूरत है, उसके लिए उसकी उसके ताल्लुक़ की ज़रूरियात और शऊर की ज़रूरियात दोनों पूरी करने की ज़रूरत है, तो उसके साथ मुकालमे की ज़रूरत है, उसके साथ ये यानी मेरी मोहब्बत उसके लिए मोतबर हो जाए ये काम करने की ज़रूरत है, एक अच्छी रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशंस मेरी और उसके दरमियान होने लगे ये उसकी ज़रूरत है। तो अगर इन दो कामों को हम नहीं करते, उसके ताल्लुक़ की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते और शऊर की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते और उसकी उसके किसी किसी मिसबिहेवियर के ऊपर हम एक इमीडिएट रिस्पॉन्स तो दे देते हैं, लेकिन मिसबिहेवियर्स यानी वो अंदर से मामला हल नहीं होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है ये काम करना। इस पर काफ़ी तफसील से हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इस पर बात हुई है, तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं, एक हम नाजिया अफजल साहिबा हैं, उनसे भी ले लेते हैं। जी नाजिया साहिबा बताइए।
ऑब्सेशन जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है या उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है?
किस चीज़ का ऑब्सेशन?
आप सोशल मीडिया का ऑब्सेशन ले लें।
किसका?
टेक्नोलॉजी का ऑब्सेशन ले लें।
हाँ, बस सिंपल सा इसमें ये समझिए कि ये चीज़ें जो बहुत एडिक्टिव होती हैं, जो भी चीज़ एडिक्टिव है अपनी नौइयत में, उसके इस्तेमाल कैसे किया जाए, उनकी पहली ज़रूरत यह है कि उनको एक ऐसा बंदा नज़र आए जो इन चीज़ों का बड़ा ज़िम्मेदाराना और मोहतात इस्तेमाल करता है, यानी बहुत केयरफुल और बहुत रिस्पॉन्सिबल यूज़ करते करते हुए मैं नज़र आऊँ, मैं इसके अंदर बहुत इंडल्ज्ड या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड इसका यूज़र ना बनूँ। पहला पहला काम यह है। दूसरा काम यह है कि उसके साथ ये कॉन्वर्सेशन हो, वो शऊर की सतह पर इस बात को समझे कि ये चीज़ें बहुत एडिक्टिव हैं, ये चीज़ें मुझे जब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो मतलब ये मुझे वक्त गुजरने का पता ही नहीं लगता और मेरा इतना टाइम इन चीज़ों में निकल जाता है। मुझे इसका इसका एक अच्छा इस्तेमाल भी है, इसका एक गलत इस्तेमाल भी है, तो मुझे अपने आप को अच्छे इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना, और अच्छे इस्तेमाल के अंदर भी मुझे अपने टाइम को लिमिट करना है। तो ये इसके साथ शऊर की सतह पे डिस्कस हो। वो बच्चा जो इस बात को समझता ही नहीं है कि इसका कोई पोटेंशियली रॉन्ग यूज़ भी हो सकता है या राइट यूज़ अनलिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकता है, वो और ये अगर इसका राइट यूज़ अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा तो ये राइट नहीं होगा, और अगर इसका रॉन्ग यूज़ छोटे टाइम के लिए होगा तो भी राइट नहीं होगा। ये चीज़ शऊर की सतह पर उसके साथ डिस्कस हो ताकि वो इस बात पे क्लैरिटी उसके पास हो। तीसरी चीज़ ये है कि उसके साथ मिल के कुछ हम रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बना लें जो उस एक्सेप्टेबल मैनर में, कि ठीक है हमने ये तय किया है कि हम बेडरूम में इतने बजे नहीं रखेंगे, हम इसको इतने बजे के बाद हम घर में ये यूज़ नहीं करेंगे, या हम डाइनिंग टेबल पे यूज़ नहीं करेंगे, या हम इस ड्यूरेशन में इस टाइम पे जब हम ये काम कर रहे होंगे तो हम गैजेट्स यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह के कुछ रूल्स हम बना लें। तो ये तीन काम है, एक केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ मेरे एंड से उसे नज़र आए कि मैं किस तरह उसे यूज़ करता हूँ, दूसरा ये कि उसके शऊर की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, इस चीज़ को वो समझे कि इसका राइट यूज़ भी है रॉन्ग यूज़ भी है, और राइट यूज़ उस राइट यूज़ की भी टर्म्स क्या होनी चाहिए, इसकी टर्म्स ऑफ यूज़ इसके क्या होने चाहिए, वो बहुत क्लैरिटी के साथ उसके शऊर उसको तस्लीम करे, उसके ऊपर डिस्कशन हो और वो उस पर कन्विंस्ड हो, और फिर घर के अंदर कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो हम म्यूचुअली आपस में कॉन्वर्सेशन के साथ कॉन्सेंसस के साथ सेट करें, उससे ये इंशाल्लाह आसानी होगी। तो आगे चलते हैं, बतूल साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं?
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 22 इयर्स ओल्ड एंड आई एम रिसेंटली मैरिड। अब जैसे हम लोग की शादी हो गई और हम लोग को इंशाल्लाह आगे अपने बच्चों को रेज करना है, तो जैसे ये जो इवेंट है, जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर हमें पेरेंटिंग ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, ये सब हमें करनी चाहिए या लाइक हमें पहले करनी चाहिए थी, या जब हो जैसे जब टाइम आए तो फिर हम जैसे जब हम फील्ड में उतर जाएं फिर हम प्ले करें, या हम पहले से थ्योरी सीखें? पहला मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ हमें पहले से सब कुछ लर्न करना चाहिए, जैसे हमें ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग की परवरिश में जो प्रॉब्लम्स हुई कि यार नहीं होनी चाहिए थी, हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी हमें समझ में आई, तो यार अब हमें नेक्स्ट अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करनी है जो भी, तो फिर वही बात हो जाएगी कि हम लोग एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेंगे कि अब हमारा बच्चा ऐसा निकलेगा या ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ, फिर उसके बाद हम हमारी वो एक्सपेक्टेशन टूटेंगी और हम फिर वही मतलब वही साइकिल रिपीट हो रही है ना। जैसे हमारे अम्मा अब्बा ने सोचा कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बच्चा चाहिए, हमें समझ आया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हमने कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन है सर, और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब सेम वो इसी के अंदर है, इसी तरीके से अगर हम रिलीजन को लाना चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर, कि हमें ये बात समझ में आ गई कि जो है हमें बच्चों को इस तरीके से रेज करना चाहिए था, अब हम पाकिस्तान में हम अलग तरीके से रेज करें, अब हम किसी और इस्लामिक कंट्री में हम अलग तरीके से रेज करें, हम किसी और नॉन मुस्लिम कंट्री में यानी कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, अब वहां पे हमें अलग तरीके से बच्चों को रेज करना है, फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल से मतलब हम कनाडा में हमने बच्चों को ये बात समझा
अच्छा,
रहे हैं कि
बेटा मुख्तसर कर लें, बतूल साहब मुख्तसर कर लें
जी, जी। अगर हम ये कहते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट, हमें बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करें, हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मतलब वहां पर सेलिब्रेट हो रही है, तो हम कैसे इस चीज को डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, या ये बहुत ज्यादा एक अजीब सा प्रोसेस तो नहीं हो जाएगा?
आपके सारे सवालों का एक जवाब ये है कि क्लैरिटी की अल्लाह से दुआ कीजिए, और ये चीज़ें सीखने के लिए जितना जल्दी सीखना शुरू करें, जितना पहले सीखना शुरू करें उतना बेहतर है, इसलिए कि ये जो पेरेंटिंग और एजुकेशन से रिलेटेड जो हम काम कर रहे हैं, जितना पहले सीखेंगे उससे ये पता लगेगा कि अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ लानी हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लानी हैं, उस आने वाले रोल के लिए अपने आप को यानी मुस्तकबिल में जो रोल आपको इंशाल्लाह मिलने वाला है उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है, तो ये जितना पहले शुरू करें उतना अच्छा है, और जितनी क्लैरिटी होगी उतने ही मामलात आसान हो जाएंगे। तो क्लैरिटी की कोशिश करें, क्लैरिटी हासिल करें। एक ही कंटेंट एक आदमी के लिए मनफात बख्श होता है और एक ही कंटेंट दूसरे आदमी के लिए वबाल होता है। ये बड़ी अजीब बात है जो मैं अभी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो एक कंटेंट की टाइप है जो अच्छा कंटेंट है और एक कंटेंट की टाइप है जो बुरा कंटेंट है। एक चीज़ तो ये है वो अपनी जगह ठीक है, जो अच्छा कंटेंट है उस कंटेंट का भी जो इस्तेमाल है और उस कंटेंट के साथ जो कमिटमेंट है या उस कंटेंट का जो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल है वो भी उसको एक कह लीजिए वबाल और खैर दोनों तय कर सकता है। यानी बहुत से यानी ये जो कंटेंट है यानी अच्छा कंटेंट जो खैर का कंटेंट है वो मेरे लिए नाफे साबित हो उसका, वो उसी सूरत में होता है जब खैर के कंटेंट को मैं अपने ऊपर कह लीजिए अपने आप को इवेलुएट करने, अपनी निगाह में अपने आप को लाने, अपने आप को टटोलने, अपने आप को ठीक करने में उसको इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर आपने सूरह बकरा का इल्म इसलिए हासिल किया है ताकि दुनिया को सीधा कर दें और बनी इसराइल को यानी बनी इसराइल का तस्करा भी सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि बनी इसराइल के मसाइल हमारे सामने लाए जाएं, बनी इसराइल का तस्करा इसलिए हो रहा है कि अल्लाह के इंतहाई चहीते लोग भी अल्लाह की के गज़ब के मुस्तहिक कैसे बनते हैं, वो कैसे यानी वो लोग जिन पे अल्लाह इतना मेहरबान रहा है और अल्लाह से इतने चहीते लोग थे वो कैसे एक गलत रास्ते पे गए हैं। तो कोई भी इल्म जो है वो असल में अपने आप को ठीक करने के लिए ही हमें दिया जाता है। जो सवाल है मैं उसके जवाब में ये कह रहा हूँ कि एक इल्म नाफे हासिल करने की कोशिश करें और उस इल्म नाफे के इस्तेमाल नाफे की कोशिश करें, मतलब इल्म नाफे हासिल हो गया उसका इस्तेमाल गैर नाफे शुरू हो गया इससे बचें। इल्म नाफे का हामिल हो जाऊँ, इल्म नाफे का यानी इल्म नाफे का फहम मेरे पास हो, इल्म नाफे मुझे मिले और इल्म नाफे का इस्तेमाल नाफे के लायक रहूं, तो ये अहम चीज़ है। और मैं ये इसको इस तरह समझ लें कि इल्म जो है वो रोशनी की तरह होता है, तो जब ये रोशनी आती है तो इस टॉर्च से, ये जो टॉर्च है इस टॉर्च से आप अपने नफ्स को देखते हैं और अपने नफ्स के खोट आपकी नज़र में आते हैं, या फिर इस टॉर्च की मदद से आप अपने रास्ते को देखते हैं और आपको देखते हैं कि अच्छा रास्ता मेरा ठीक है या नहीं है, मैं अपना रास्ता यानी मैं अपने रास्ते को ठीक करूं और अपने रास्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करूं और मैं सही रास्ता चूज़ करूं। तो इल्म आना अपनी जगह ठीक है, आप इसमें ये ज़रूरी चीज़ें हैं सीखनी चाहिए ज़िंदगी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, वालिद या पेरेंटिंग के बारे में अवेयरनेस पेरेंट बनने से मेरे नज़दीक 5 साल पहले से आनी शुरू हो जानी चाहिए ताकि हम, और बल्कि अल्लाह का एक निज़ाम ऐसा है कि आपको माँ बनाने से पहले 9 मंथ्स पहले अल्लाह इस बात की इत्तला दे देता है कि आपको आप एक ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, एक मेंटली प्रिपेयर होते हैं और आपको एक अंदाज़ा होता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, तो आप उसको आपको इतना टाइम चाहिए होता है। मतलब अल्लाह तो क़ादिर था इस बात पर कि 2 हफ़्ते में भी आपको, यानी अल्लाह चाहे तो 2 हफ़्ते में भी कर सकता है ना ये काम जो 9 महीने में किया गया है, अल्लाह चाहे तो उसको उसको शॉर्ट भी कर सकता था, लेकिन ये ज़हनी और नफ्सियाती तैयारी के लिए ज़रूरी चीज़ थी। हम एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, मेरी गुजारिश ये है कि बहुत मुख्तसर सवाल कीजिएगा, मतलब लंबा नहीं कीजिएगा। वालेकुम सलाम, बताइए
जी। मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरा बेटा है माशाल्लाह वो 10 साल के होने वाले हैं और जो छोटे बेटे हैं वो 4 साल के हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो छोटे वाले हैं वो काफ़ी शरारती हैं, वो बस प्यार में, लड़ाई में, हर चीज़ में वो भाई को मारता है और मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि वो मारे नहीं, मतलब वो प्यार भी होगा तो ऊपर चढ़ जाएंगे, हाथ मारना, आते जाते तंग करना, वो एक चीज़ है। तो मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको समझाऊँ कि बेटा बड़ा भाई है, नहीं मारो, लेकिन वो नहीं सुन, मतलब वो सुनता ही नहीं, वो किसी तरह भी नहीं सुनता। तो क्या किया जाए कि वो मतलब भाई है, बड़ा है, ना मारे, कि क्या किस तरह समझाऊँ उसको?
बस 2 फैक्टर्स बता रहा हूँ, उन दोनों को देख लीजिए कि उन दोनों में से कोई एक भी सिचुएशन में एग्जिस्ट तो नहीं करता, इस बच्चे के कोई लाड तो नहीं उठा रहा, ये देख लीजिए। लाड किसे कहते हैं उसको ज़रा समझिएगा, ये हमारे टॉक्स में तफसील से बताया गया। और दूसरी बात ये कि आप या आपके शौहर जो हैं थोड़ा सा उन्हें गुस्से का मसला तो नहीं हो गया है, टेम्परामेंट का इशू तो नहीं है, तो ये भी देखिएगा। तो आपका बच्चा, आप उसे गले लगाना शुरू करें और मतलब ज़्यादा गले लगाइए, और बड़े बेटे को जब आप टाइम दें तो इंडिविजुअल टाइम छोटे बच्चे को अलग दीजिए, बड़े बेटे को अलग दीजिए, और बच्चों को गले लगाइए। कभी कभी ये होता है कि बच्चों को लाड मिल रहा होता है, बच्चों को लाड की एक निशानी यह है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए, हर विश उसकी पूरी की जाए, और अगर ये काम शुरू हो जाए तो बच्चे के साथ बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो या फिर एक लाड की एक और सूरत यह है कि बच्चे की तारीफ़ें की जाएं, ये भी एक बहुत ही एक नाजुक सी बात है जो मैं अभी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बच्चों की तारीफ़ जो है, बच्चों को हौसला अफज़ाई की ज़रूरत है, बच्चों को एतमाद की ज़रूरत है, बच्चों को मोहब्बत की ज़रूरत है, बच्चों को रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। तारीफ़ जो है वो उनकी ज़रूरत नहीं है, तारीफ़ उनको अच्छी लगती है, تعریف آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تعریف ہماری بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تعریف کا مسئلہ یہ ہے، تعریف ایک امتحان ہوتا ہے، تعریف ہمارے نفس کے لیے بہت مضر چیز ہے۔ تو جب کوئی ہمیں ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم اس طرح ڈیزائنڈ ہیں کہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اور لیکن اصولی طور پر ہمیں تعریف کو ریزسٹ کرنا چاہیے، اصولی طور پر ہمیں تعریف، مطلب تعریف کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کسی والد یا والدہ کے لیے کہ اپنے بچے کی بالکل بھی تعریف نہ کرے، تھوڑی بہت تعریف ہوگی لیکن کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پر تعریفیں نہ ہوں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کو ایک اس کو محبت کا اظہار ہو، اس کو پیار کریں، اس کو بتائیے اس میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، اور اس کو گلے لگائیے اور اس پہ ٹرسٹ کیجیے۔ لیکن اس کی ہر وش پوری کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ اس کا خیال کیجیے، اور یہ دیکھیے کہ کہیں آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے رویوں میں کہیں ٹیمپرمنٹ کے ایشوز تو نہیں ہیں، اس کو دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بڑے بیٹے کو آپ نے کہیں ڈانٹا ہو یا کسی کو کوئی سختی کی ہو تو اس نے دیکھا ہو کہ اچھا بڑے بھائی کے ساتھ ایڈلٹ ورلڈ کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں، تو میں ابھی سے اس کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہا ہوں جیسے امی بیہیو کرتی ہیں۔ بہت سے چھوٹے بچوں نے، چھوٹے بہن یا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے ساتھ سختی اس لیے شروع کی ہے کیونکہ بڑوں نے اس کے ساتھ سختی کی ہوئی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ ان سارے فیکٹرز کو دیکھیے گا، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ہم یہاں پر اس کو کلوز کرتے ہیں۔ میری طرف سے بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، اور میری گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے آج حاصل کیا ہے اس کو اپنے آس پاس جاننے والوں سے شیئرنگ کیجیے۔ اس کی شیئرنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان نون آڈینس سے اس کو جا کے بس اس کو سوشل میڈیا پہ اس کی پوسٹ بنا کے ڈال دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گھر میں چار آدمی رہتے ہیں اور جو دوستوں میں جن لوگوں سے آپ کی ملنا جلنا ہے، جو لوگ جو نون آڈینس ہے، جو آپ کی زندگی میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس پہ بیٹھ کے بات چیت کیجئے، اور اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ان کو سمجھایا جائے، اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ بات خود میرے لیے ذرا کلیئر ہو جائے، میں ذرا ان سے ڈسکشن کر کے کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ایک امکان پیدا ہو جائے، میں ان سے ڈسکس کروں، ہو سکتا ہے مجھے اور کوئی بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ تو اپنے آپ کو سنانے کے لیے آپ اپنے گھر میں اس بات کو ذرا ڈسکس کیجئے، جاننے والوں سے ڈسکس کیجئے، تو اللہ آسان کرے، اور اللہ ہم سب کو اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ آپ سب کی اولادوں کو اور آپ سب کے اسٹوڈنٹس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کو اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔